नमः सिद्धिभ्यः यार्ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नुमीरिदे मत्तु यार्दिव्यध्वनियुलोकहितवमाडिदे ಮೂರುಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕೀ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಮನುಷ್ಯ ಗತಿ ಕೀ ಚರ್ಚಾ ಪೂರ್ಣ ಹೋ ಚುಕಿ ಹೈ ಅಬ್ ತ್ರಿಯಂಶ ಗತಿ ಕೋ ದೇಖೆಂಗೆ ತ್ರಿಯಂಶ ದೊ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಕರ್ಮ ಭೂಮಿಜ್ ತ್ರಿಯಂಶ ಔರ್ ಭೋಗ ಭೂಮಿಜ್ ತ್ರಿಯಂಶ ಕರ್ಮ ಭೂಮಿಜ್ ತ್ರಿಯಂಶ ಜೋ ಸಂಗೀ ಹೇ ವೇ ಜಲಚರ್ ಥಲ್ಚರ್ ವರ್ ನಬ್ಚರ್ ನಬ್ಚರ್ ಕೋ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮೇ ದಿಯಾ ಹೈ ಕ್ಯೋ ದಿಯಾ ಹೈ ಈ ನೀಚೆ ದೇಖೆಂಗೆ उस चिन्ह के अनुसार नीचे मिलेगा क्या लिखा है जरायुज नवचरों का कथन नहीं मिलता जरायुज नवचरों का कथन नहीं मिलता नवचर यानी पक्षी पक्षियों में ऐसा कौन जीव है जो जरायुज हो और जरा जन्म जिसको होता हो और उड़ता हो ऐसा कथन मिलता नहीं है। जरायुज नवचर जीवों का कथन नहीं मिलता। कर्मभूमि में उड़ने वाले प्रायः सभी पक्षी होते पक्षियों में जरायुज कौन है मनुष्य का जिस प्रकार जन्म होता है ना वैसा जन्म होना चाहिए जरा जन्म पक्षी पैदा होने के बाद अंडे से होते हैं क्या डायरेक्ट होते हैं अंडे से और नवचर यानी उड़ने वाले प्राणी जीव उड़ने वाले जीवों में जरायुज कौन इसका कथन नहीं मिलता इसलिए यहां उसको ब्रैकेट में रखा है। पर्याप्त जलचर थलचर और नवचर ये दोनों तीनों यदि पर्याप्त अवस्था में हैं तो इनके गुणस्थान एक से पांच पक्षियों में भी गुणस्थान पांच हैं संघी पंचेंद्री पक्षी पांच गुणस्थान बनते वे पक्षी भी पांच अनुव्रत तीन गुणव्रत चार शिक्षाव्रत आदि का पालन कर सकते हैं दूसरी प्रतिमाधारी बन सकते हैं बारह अनुव्रतों का पालन करना ये नवचर जीवों के लिए भी संभव है जलचर के लिए है ही और थलचर जीवों के लिए तो है ही, परंतु नवचर जीवों के लिए भी संभव है। कोई भी मोर है, पांचगुण स्थान हो सकते, मोर है, और कौन कौन से पक्षी, तोता है, पक्षी है, संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, मन होना आवश्यक है। पांच गुण स्थान के लिए क्या चाहिए? मन होना आवश्यक है और भव्य जीव होना आवश्यक है। भव्य जीव, अभव जीव को नहीं होगा। संगी पंचेंद्रिय बनने के बाद भी अभव्य अगर होता है तो उसको नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पांच गुण स्थान नहीं होंगे उसका। एक ही गुण स्थान सदा के लिए। अभव जीव कहीं भी रहे, अभव जीव वज्र ऋषभ नाराज सहनदारी मनुष्य भी बन सकता है। हाँ, अभव जीव वज्र ऋषभ नाराज सहनदारी मनुष्य भी बन सकता है। संगी है क्या? नहीं, मनुष्य तो संगी ही होता है, फिर वो मोक्ष जाएगा क्या? एक से अधिक गुणस्थान उसके हो सकेंगे क्या? पहला वाला ही गुणस्थान रहेगा। अभव्य तो अभव्य ही है, संसार का कोई भी साधन वो पाले मोक्ष जाने लायक साधन, बाहरी साधन, भीतरी साधन के बिना बाहरी साधन मिलने से क्या लाभ है? हाँ, पुण्य कर्म से उदय से होता है, पुण्य कर्म के उदय। क्या अभव जीव पुण्य नहीं कर सकता? अभव जीव पुण्य करके तो नवे ग्रह तक जा सकता है। मिथ्या दृष्टि जीव पहले गुण स्थान में रहकर त्याग तपस्या का अनुसरण भी कर सकता है, लेकिन बहिरंग केवल, अंतरंग त्याग नहीं हो पाता। अंतरंग त्याग कितना? 14। बहिरंग त्याग कितने? 10। अभव जीव 10 का ही त्याग कर सकता है। 14 ज्यों के त्यों बने रहते हैं, और 10 के त्याग के बल पर, देखो बहिरंग त्याग के बल पर वह त्याग तपस्या भी करेगा, निर्ग्रंथ मुनि भी बनेगा। कैसे निर्ग्रंथ? बाह्य निर्ग्रंथ केवल, अभ्यंतर निर्ग्रंथ नहीं हो पाता। अभ्यंतर निर्ग्रंथ में तो 14 परिगों को हटाना पड़ेगा, एक मिथ्यात्व, 4 कषाय और 9 कषाय, इनको हटाना पड़ेगा, वो संभव नहीं है अभव जीव को। तो अभव जीव मान लो कोई भी जीव आकर के मनुष्य गति में पैदा हुआ और यहां पर वज्र ऋषभ नाराज सननधारी बना, तो अधिक से अधिक कहां तक जा पाएगा? मुनि दीक्षा भी ले लें तो कहां तक जा पाएगा? 9 ग्रविक तक जा सकेगा, क्योंकि 9 ग्रविक के बाद तो नियम से सम्यक दृष्टि निर्ग्रंथ मुनि ही जाते हैं। सम्यक दृष्टि यानी छठे सप्तम गुणस्थान में जो मरण कर रहे हैं ना, वे नवे ग्रह के उपरांत 9 अनुदिश में 5 अनुत्तर विमान में यहां जाने के लिए नियम से सम्यक्त्व के साथ मरण करना पड़ेगा एक मुनि को। किंतु ये अभव्य जीव को संभव है क्या? तो अभव्य जीव पुण्य नहीं कमा सकता है क्या? मुनि बन करके पुण्य कमाना किसी को मुश्किल की बात नहीं है। एकेंद्री जीव को भी ये वज्रषभ नाराज सहन का बंद होता है, मनुष्य आयु का बंद होता है, मनुष्य गति का बंद होता है, ये चर्चा नहीं हुई है क्या? तो मनुष्य आयु पुण्य प्रकृति है क्या पाप प्रकृति? वज्रषभ नाराज सहन ये पुण्य प्रकृति है क्या पाप प्रकृति? तो जब एक निगोदी जीव पुण्य कर सकता है, ऐसा क्यों सोचते हैं कि पुण्य करने वाला तो बहुत बड़ा वो ही रहता है यानी बहुत बड़ा मनुष्य रहता है और रोज मंदिर जाता है ऐसा सोचते हैं क्या? जो मंदिर नहीं जाता वो भी पुण्य कमा सकता है, निरंतर पुण्य कमा सकता है। कैसे? मंद कषायी होने से। उस निगोदी जीव को मनुष्य आयु का, मनुष्य गति का, वज्रषभ नाराज सहन का बंद कब हुआ? तीव्र कषाय में क्या मंद कषाय में, बस हो गया क्या, मंदिर गया था वो। हाँ देखो भव्य, ये प्रश्न हटते नहीं है बार बार। देखो बार बार ये प्रश्न समाधान नहीं होते, वो भूल करके फिर वही प्रश्न रहता है कि अभावी कैसे बन गया वो। एक बार कहा था प्रवचन में, ध्यान नहीं है, अभव्य जीव स्वभाव से है। उदाहरण दिया था जैसे गोल्डू मूंग, ठर्रा मूंग, क्या बोलते उसको, कलगाड़, कन्नड़ में कलगाड़, मराठी में क्या बोलते, मराठी में क्या बोलते, ठोर, जो छोर, छोर छोर, एक छोर मूंग होता है और एक सामान्य होता है, उसमें अधिक कौन होते हैं, सामान्य अधिक होते हैं, और जो विशेष होता है वो एकाध ही होता है उसमें। तो वैसे ही संसार में जो भव्य जीव हैं, सामान्य भव्य जीव, वो बहुत अनंतानंत संख्या में, लेकिन उनके अनंत गुने कम अभव जीव होते हैं, अभव जीव। तो ये अभव जीव क्या है, अभव जीव का मतलब ठर्रा मूंग के समान है, छोर मूंग, ये स्वभाव से है, ये स्वभाव से है, किसी ने बनाया नहीं उसको, वो स्वभाव से बन चुका है, नेचुरली बन चुका है, प्रकृति में तैयार हुआ है, उसकी एक जाति है, उसकी एक जाति है, अभव एक जाति है, वो जाति को बदल नहीं सकता, पारिणामिक भाव है वो, पारिणामिक भाव, स्व उत्पन्न भाव, स्व नैसर्गिक भाव। नहीं नहीं नहीं, वो गलत, वो कहना भी गलत, गलत रूढ़ी चली आ रही है, अभव यानी पापी, भव्यात्मा यानी पुण्यात्मा, लगा दिया कहीं भी कहीं का अर्थ नहीं। सिद्धांत ये कहता है अभव्य यानी पापी नहीं और भव्य यानी पुण्यात्मा नहीं, भव्य भी पापी है, अभव्य भी पापी है, भव्य भी पुण्यात्मा है, अभव भी पुण्यात्मा है, करेंगे तो है, नहीं करेंगे तो नहीं है। पुण्य करेगा तो पुण्यात्मा है, पाप करेगा तो पापात्मा है, भव्य भी और अभव्य भी। हाँ हाँ हाँ, अभव्य जीव में यह नैसर्गिक एक शक्ति है, नैसर्गिक एक प्रकार का परिणाम उसका इस प्रकार का बना हुआ रहता है कि वह अंतरंग धर्म की ओर आकर्षित नहीं होता, हो नहीं हो पाता। वह हजार प्रयत्न कर ले, करोड़ प्रयत्न कर ले कि मैं अंतरंग धर्म को कर लूं, नहीं कर सकता। इसके लिए उदाहरण एक दिया जा सकता है, जैसे किसी भव्यात्मा को नरकायु, त्रिंचायु और मनुष्यायु का बंध उसने कर लिया, तो तीन काल में हजार करोड़ भी प्रयत्न कर ले, वो मुनि दीक्षा नहीं ले सकता, वो देश संयमी नहीं बन सकता, अविरत सम्यक दृष्टि बन सकता है। तो इस किसका प्रभाव है, जैसे कर्म का प्रभाव आत्मा के ऊपर ये बन ही नहीं सकता त्रिकाल में, ऐसा है ना, वैसे ही ये कर्म का प्रभाव न कह करके आत्मिक ओरिजिनल चैतन्य परिणाम, जो पारिणामिक परिणाम है, उन पारिणामिक परिणामों का उल्लंघन करके कुछ कर नहीं सकता वो। जैसे हम आयु कर्म का उल्लंघन करके संयम धारण नहीं कर सकते, नरकायु का, त्रिंचायु का, मनुष्यायु का बंद हुआ हो तो हम इसका उल्लंघन नहीं कर सकते, है भव्य जीव। हाँ, कभी भी मोक्ष जाएगा ही नहीं, वही तो बता रहे हैं ना, जो इसका गुणस्थान क्या बताया, देखो अभव्य जीव का गुणस्थान पहला, और ये पहला गुणस्थान कैसा है देख लो, अनादि अनंत, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, ये उसका नियम ही है, इसलिए मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकेगा। लेकिन भव्य जीव को ये नियम लागू नहीं होता। पहला गुणस्थान उसका अनादि से तो है लेकिन शांत है, शांत यानी कभी भी वह उसको छोड़ सकता है। उस पहले गुणस्थान को समाप्त कर सकता है, एंड हो सकता है, लेकिन अभव्य को एंडिंग ही नहीं है, छोड़ नहीं सकेगा वो। क्यों? तो क्यों, तो वही तो उत्तर जो दिया है वही उसका उत्तर है। हाँ, स्वभाव ही उत्तर है, पारिनामिक स्वभाव बोला है इसको। पारिनामिक भाव भाव कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, जीव भव्या भव्यत्व भव्या नीचे क्या आया है ना सूत्र, जीव भव्यत्व, जीव भव्यत्व हाँ, जीव भव्या भव्यत्वानिच, जीव भव्या भव्यत्वानिच, ये जो सूत्र आया है कहाँ आया है? ये तत्वार सूत्र में, उसमें ये कहा है जीव पारिणामिक भाव की अपेक्षा से तीन प्रकार के होते हैं। जीवत्व को धारण करने वाले तो सभी हैं, भव्य जीव के पास भी जीवत्व शक्ति है, जीने की शक्ति है, अभव के पास भी जीने की शक्ति है। जीवत्व की अपेक्षा से सभी जीव जीव हैं, जीवत्व शक्ति वाले हैं, लेकिन भव्य जीव और अभव्य जीव, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये दोनों ही शक्ति दो जीवों में अलग अलग हैं। जिसको भव्यत्व शक्ति है वो भव्यत्व शक्ति अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, ये भी अनादि अनंत है भव्यत्व शक्ति। लेकिन गुणस्थान, गुणस्थान कब तक रहेगा? अनादि शांत है, गुणस्थान की अपेक्षा से भव्य जीव अनादि शांत है, और भव्यत्व शक्ति की अपेक्षा से देखो तो वो अनादि काल से था, अनादि काल तक रहेगा भविष्य में। और अब कौन सा? नहीं नहीं, भव्यत्व पने का मतलब होनहार, जो हो सकता है उसका नाम भवितुम योग्यः भव्यः, जो होने की योग्यता रखता है, जो होने के योग्य है उसको भव्य कहा। ये भव्यत्व नामक शक्ति पहले भी था और अनादि काल तक भी रहेगा, वो संसार की अपेक्षा से। अब मुक्त होने की अपेक्षा से आप विचार करते हैं तो होने की अपेक्षा से शक्ति को धारण कर रहा तो अब तो हो गया, क्या हो गया? मुक्त हो गया, मुक्त हो गया, मुक्त होने के उपरांत अब क्या होगा? हाँ, अब वह अभव्य बन गया। नहीं, सही बात है, हाँ अभव्य बन गया, सिद्ध परमेष्टि अभव्य हैं। संसार में जब तक थे तब तक भव्य थे। भव्य का मतलब क्या? होने की योग्य वाला जीव। तो क्या होने की योग्य वाला जीव? मोक्ष रूप पर्याय में परिणत होने की योग्यता जिसमें हो वो भव्य, और जिसमें होने की योग्यता नहीं है वो अभव्य। ये मोक्ष की अपेक्षा से कथन किया। अब उल्टा कथन करो, सिद्ध परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि अभव्य हैं। हाँ, ठीक है ना, वो बिल्कुल घटाना आ गया। देखो, सिद्ध परमेष्टि अभव्य हैं किस अपेक्षा से? हाँ, सिद्ध पर्याय से संसार पर्याय की उत्पत्ति की शक्ति उनमें नहीं होने से अभव्य हैं। न भवितुम योग्यः अभव्यः, जो होने की योग्यता नहीं रखता उस स्वभाव को अभव्य स्वभाव कहा है। तो जैन धर्म अनेकांत, जिस जीव को हम संसार अवस्था में भव्य कहते हैं वो कालांतर में अभव्य भी है। यहां भव्याभव्य का स्वरूप इतना ही, होने की योग्यता रखना और होने की योग्यता न रखना। हाँ हाँ, अभव्य भी अच्छा है। हम अभव्य को तो नमस्तु करते हैं। जो सिद्ध परमेष्ठी हैं सब अभव्य हैं, उन अभव्यों को नमस्कार, नमो सिद्धानम, सिद्धों को नमस्कार। क्यों नमस्कार कर रहे हैं? वो होने की योग्यता नहीं रखते हैं इसलिए पूज्य हैं, उनको नमस्कार। किस रूप में होने की योग्यता नहीं रखते? संसार रूप में होने की योग्यता नहीं रखते, और ऐसे जो नहीं रखते वही फिर सही सिद्ध परमात्मा है। सिद्ध बन गए और लौट आए तो हम नमस्कार क्यों करेंगे? हाँ वही तो, इसलिए तो अभव्य है ना, इसलिए वो अभव्य हैं, लौट नहीं आते इसलिए अभव्य हैं। हाँ, वो अभव्य हैं इसलिए तो हम नमस्कार करते हैं। हम संसारी अभव जीवों को एक बार भी नमस्कार नहीं करते, लेकिन सिद्ध अभव जीवों को हम नमस्कार अभव्य हैं इसलिए करते हैं। हाँ? और संसार में रहते हुए जो अपने भव्यत्वपने को प्रकट कर लिया उनको भी नमस्कार करते हैं, जैसे अरहंत भगवान हैं, जैसे पंच परमेष्ठी हैं, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, ये संसार की अपेक्षा से भव्य हैं, उस भव्यत्व गुण को हम नमस्कार करते हैं। उस योग्यता को उन्होंने प्रकट कर लिया, मोक्ष मार्ग को अपने में जन्म दिया, प्रकट हो गया मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्गी को ही केवल नमस्कार होता है। संसार में रहने वाले शरीरधारी किसी जीव को नमस्कार होता है तो वे जो अभव्यपने को त्याग कर भव्यपने को पूर्णतः प्रकट करते हुए रत्नत्रय को धारण किए हैं उनको नमस्कार होता है। 3.9 करोड़ मुनियों को ही नमस्कार करते हैं क्या नहीं? क्या नीचे वाले, नीचे के गुणस्थान वालों को, 5वें गुणस्थान वालों को नमस्कार नमोकार मंत्र में है क्या? 5वें गुणस्थान में कौन आते हैं? हाँ, अनुवृत्ति श्रावक, प्रतिमाधारी श्रावक, और अनुवृत्ति तिरेंच, 12 अनुवृत्ति तिरेंच, ये 2 आते हैं। यदि श्रावक को नमस्कार करते हैं तो फिर तिरेंच को भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों ही बाण अनुवृत्ति है, अनुवृत्ति समान है वो दोनों। तो अनुवृत्ति भी वंदन के योग्य नहीं है। अब चलो, आरिका को कौन से व्रत होते हैं थोड़ा सा ये भी स्टेप जान लेते हैं, ये भी जस्ट समझ लें। हाँ, उपचार महाव्रत, महाव्रत यानी मुनियों के महाव्रत होते हैं क्या? मुनियों की तरह महाव्रत उनके यदि हो जाएं तो फिर 6वां गुणस्थान तो बनना ही चाहिए। नहीं होता, मुनियों के महाव्रत जैसे महाव्रत नहीं होते। तो कौन से व्रत होते हैं? उपचार होते हैं। जो महाव्रत साक्षात हैं वे औपचारिक रूप से हैं, तो औपचारिक महाव्रत साक्षात महाव्रत नहीं होते, ये ऐसा समझ लेना चाहिए। नहीं तो औपचारिक महाव्रतों को भी साक्षात महाव्रत मानेंगे तो नमस्कार करने में कोई आपत्ति नहीं। औपचारिक हैं इसलिए नमस्कार नहीं किया है। आरिकाएं औपचारिक महाव्रतों को धारण करके क्या नमोकार मंत्र में हैं? नहीं है। तो कितनों को नमस्कार हुआ है वहां? 5 को ही नमस्कार हुआ है। साधु परमेष्टि साक्षात महाव्रति हैं। अभ्यंतर के 14 परिग्रह निकल गए हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो चार हैं वो तीन प्रकार से निकल गए हैं, जो असयम भाव को उत्पन्न करने में सहायक कषाय हैं, चार कषाय वो निकल गए। अनंतानुबंधी चार कषाय, अप्रत्याख्यानावरणी चार कषाय, प्रत्याख्यानावरणी चार कषाय, ये असयम भाव के उत्पत्ति में कारण बनते। इन चार कषायों को, वैसे 12 हो गए ये, चार त्रिक 12, 12 हो गए, ये 12 कषायें हटाया उन्होंने। इन 12 कषायों को हटाए बिना कोई भी नमोकार मंत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। इनको जीत करके ही जैन मुनि बनना पड़ेगा। जो 12 को जीतते हैं वो जैन मुनि, जो एक चतुष्क को जीतते हैं, अनंतानुबंधी चार को जीतते हैं वो जैन श्रावक, गृहस्थ कह सकते हैं, श्रावक मत कहो, जैन गृहस्थ। और फिर अप्रत्याख्यानावरणी चार चतुष्क को भी जीत लेते हैं, दो जैन श्रावक बनता है। और प्रत्याख्यानावरणी चतुष्क को भी वह जीत लेता है तो जैन मुनि बनता है। और ऐसे मोहिनी कर्म के समस्त प्रकृतियों को ही जीत लेता है तो संपूर्ण कषाय विजेता मुनि कहलाते हैं। और उनको जीतने के बाद, समस्त मोहिनी कर्मों को जीतने के बाद, अंतर मुहूर्त तक वह विजेता बन करके ध्यानस्थ हो जाता है तो शेष घाती कर्मों को भी जीत करके अरहंत बनता है। अरहंत भी विजेता है लेकिन घाती कर्मों के विजेता है, मुनि भी विजेता है लेकिन मोहिनी कर्म के विजेता है, श्रावक भी विजेता है लेकिन वे अनंतानुबंधी के विजेता हैं, गृहस्थ भी विजेता है। देखो, श्रावक विजेता है तो वे एक देश असयम के उत्पत्ति में कारणीभूत जो अप्रत्याख्यानावरणी कषाय है उस कषाय के भी विजेता हैं और सम्यक्त्व नाशक कषाय के भी विजेता हैं। जो देश संयम का घातक कषाय है वो अप्रत्याख्यानावरणी कषाय, और जो सम्यक्त्व का घातक कषाय है वो अनंतानुबंधी कषाय। इन दोनों को जो जीत लेता है वो एक देश वृत्ति बनता है, वो श्रावक कहलाता है। तो पूर्ण असयम का कारणीभूत यदि कोई कषाय है, क्या बोल रहे हैं हम, पूर्ण असयम के कारणीभूत यदि कोई कषाय है तो दो हैं, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरणी। और एक देश असयम का कारणीभूत यदि कोई कषाय है तो वह प्रत्याख्यानावरणी एक ही है। और पूर्ण संयम के लिए कारणीभूत कोई कषाय है तो वह संज्वलन कषाय। संज्वलन कषाय का उदय होते हुए भी पूर्ण संयम रहता है, बना रहता है। कौन सा पूर्ण संयम? सकल संयम, सकल संयम बना रहता है। लेकिन प्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय होते ही उसमें कमी आती है। तो प्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय जीव को किस तरह के परिणामों को उत्पन्न करा देता है तो वो कषाय आपके लिए ये प्रेरणा देती है कि पूर्ण त्याग मत करो, सकल संयमी मत बनो, बनना हो तो इतना ही बनो, थोड़ा सा परिग्रह कम करो और बाकी सब रखो। इस टाइप के जो परिणाम रहते हैं ये किस काल में रहते हैं? प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय के काल में ही ये होते हैं। एक देश संयम के परिणाम रहेंगे ही। किस गुणस्थान में? पांचवें गुणस्थान में। किंतु ये भी सोचो कि जब तक हम किसी मोहनी कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा, तब तक सम्यक्तों को या व्रतों को धारण नहीं कर सकते। अनंतानुबंधी का क्षयोपशम होगा तो सम्यक दर्शन भी प्रकट होगा और सकल संयम भी प्रकट होगा, देश संयम भी प्रकट होगा। ठीक है, होगा हा? अप्रत्याख्यानावरणी कर्म के उदय, कर्म का उदय जब तक रहता है तब तक जीव एक देश संयम को धारण नहीं करता। तो किसका क्षयोपशम करना पड़ेगा? अप्रत्याख्यानावरणी का। अप्रत्याख्यानावरणी कर्म का क्षयोपशम जब तक नहीं होगा, यानी उसका उपशमन भी हो और उदयाभावी क्षय भी हो, ऐसा होने के लिए पंचम गुणस्थान चाहिए। प्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय रहे तो चल सकता है, देश संयम हो सकता है, किंतु अप्रत्याख्यानावरणी कर्म का उदय हो तो क्या देश संयम के परिणाम होंगे? नहीं होंगे। तो इसका क्या करना पड़ेगा? क्षयोपशम अवस्था को अवस्था में ढालना पड़ेगा। अनंतानुबंधी कर्म का क्षयोपशम होने पर सम्यक दर्शन हुआ। क्या हुआ? या तो उपशमन होने पर सम्यक दर्शन हुआ, या क्षयोपशम होने पर सम्यक दर्शन हुआ, या क्षय होने पर सम्यक दर्शन हुआ, ये कह सकते हैं। अब अप्रत्याख्यानावरणी कर्म का क्षयोपशम होना पड़ेगा क्या नहीं होना पड़ेगा? देश संयम प्राप्त करने के लिए होना पड़ेगा। तो अप्रत्याख्यानावरणी कर्म का क्षयोपशम होने पर जीव किस गुणस्थान में प्रवेश करता है? पांचवें गुणस्थान में। अब छठे गुणस्थान में प्रवेश करने के लिए और भी क्षयोपशम को प्राप्त होना पड़ेगा। किस कषाय का क्षयोपशम करना पड़ेगा? प्रत्याख्यानावरणी कर्म का क्षयोपशम करना पड़ेगा, यानी इसका भी उपशमन हो और उदयाभावी क्षय हो, ये क्षयोपशम अवस्था कहलाती है। इन कषायों के विजेता बनने से हमें सम्यक दर्शन और संयम, ये दोनों प्राप्त होते हैं। देखो, इसको एक ही बार समझना पड़ता है, फिर बार बार समझना नहीं पड़ता। एक बार समझ में आ गया तो बिल्कुल फिट बैठ जाता है, फिर कभी भूलता नहीं। फिर ये समझ में आ गया तो हजारों शंकाओं का निवारण अपने आप होता है। हमारी शंकाएं संयम संबंधी, सम्यक्त संबंधी जो उठती हैं, क्यों उठती हैं बार बार शंकाएं? कि इनकी जो व्यवस्था है, कर्मों की जो व्यवस्था है, कर्म सिद्धांत की जो व्यवस्था है, वो समझ में अपने को नहीं आता, इसलिए। तो और एक बार उसकी जड़ तक पहुंच करके समझ लिया तो फिर जो भी शंका उठती है ना, उसका उत्तर अपने मन में ऑटोमेटिक मिलता है, क्योंकि गणित है। वो गणित का, गणित की विधि मालूम है तो उसका उत्तर ऑटोमेटिक निकलता है और सही उत्तर ही निकलता है। प्रत्याख्यानावरणी कर्म का उदय हो तो प्रतिमाधारी बना हुआ होता है, वो बन चुका होता है। अब सकल संयम को, यानी मुनिव्रतों को धारण करने के भाव करेगा, लेकिन वो भाव होने के लिए भी प्रत्याख्यानावरणी कर्म का क्षयोपशम होना जरूरी है। जब तक क्षयोपशम अवस्था का समय नहीं आता तब तक उस संयम को धारण करने के परिणाम नहीं होते। तो क्षयोपशम कैसे बढ़ाना चाहिए? हाँ, ये प्रश्न मार्मिक है। हाँ, ये क्षयोपशम करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो देखो, नीचे से हम आपको प्रश्न पूछते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अनंत अनुबंधी का क्षयोपशम आपने किया, तो क्षयोपशम करने के लिए क्या किया, क्या क्या पुरुषार्थ किया? मिथ्यात्व को छोड़ा। मिथ्यात्व छोड़ा का मतलब क्या छोड़ा? मिथ्यात्व छोड़ा का मतलब क्या छोड़ा? हाँ, ये भी तो मालूम होना चाहिए। देखो, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना तो एक बाहर की मामूली बात है, अंतरंग में क्या किया, किस टाइप के परिणामों को धारण किया, हाँ वो सबसे जरूरी है। तो तीनों को दर्शन जो जो करते हैं वो नियम से सम्यक दृष्टि रहते हैं ऐसा लगाएं? देखो, न्याय करे इसमें, जो जो पंच परमेष्टि के शरण में रहते हैं वो सब सम्यक दृष्टि हैं, ऐसा नियम बनेगा क्या? हाँ हाँ, फिर अंतरंग की ओर देखो ना, कि बाहर को ही क्यों देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करने से सम्यक दृष्टि हम बन जाते हैं और देव शास्त्र गुरु के भक्त बन गए, सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त बन गए, अब तो सम्यक दृष्टि कहना ही चाहिए उस जीव को। नहीं, अभी भी नहीं कहेंगे, जब तक अनंत अनुबंधी कर्म का क्षयोपशम नहीं करेंगे तब तक सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य भी आपको कुछ लाभकारी नहीं है। अंदर से सोचो, जो अंदर का काम हो गया, बहिरंग का काम तो ऑटोमेटिक हुआ ही रहता है, हो चुका होता है, अंदर में क्या काम करना ये विचार करो, अंदर के कैसे परिणाम होना चाहिए, किस टाइप के परिणामों से हम पुरुषार्थ करें जिसके माध्यम से अनंतानुबंधी कर्म का क्षयोपशम हो। हाँ, किसको? मिथ्यात्व। वो मिथ्यात्व क्या है, पहला उसका डेफिनेशन हम आपसे पूछ रहे हैं। वो मिथ्यात्व को डिपॉजिट किया था, वो मिथ्यात्व मतलब क्या डिपॉजिट किया था? विपरीत मान्यता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, उसको जीरो करना, हाँ निकाल देना। जीरो करेंगे तो फिर वो रहेगा वहां, मंद मंद जलता रहेगा। लैंप की बत्ती को जीरो कर दिया तो भी जलता रहता है, उसको हटाना, यानी अंधश्रद्धा को एक देश हटाने से भी काम नहीं चलेगा, अंधश्रद्धा को तो पूरी तरह से ही समाप्त करना पड़ेगा, अभाव करना पड़ेगा। अंधश्रद्धा अभाव हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। तो हमारी अंधश्रद्धा कहाँ कहाँ पर होती है? हाँ, देखो बहुत जगह होती है, हजारों हजारों जगह हमारी अंधश्रद्धा हो सकती है, हजारों जगह, वो सब अंधश्रद्धा की कोटी में आता है। जैसे सच्चे गुरु का लक्षण भी नहीं समझते और मिथ्या गुरु का लक्षण भी नहीं समझते, तो दोनों को नहीं समझते हुए हमारा श्रद्धा का विषय कौन सा बन पाएगा? इसको भी नहीं समझते, उसको भी नहीं समझते, तो वह व्यक्ति दोनों तरफ रहेगा, वह जीव दोनों तरफ श्रद्धान करेगा। लक्षण तो पहले समझना पड़ेगा ना, कि सच्चे गुरु का क्या लक्षण है जिससे कि हम उस लक्षण के आधार से श्रद्धान कर सके, उनके गुण पता चल जाएं, उनके दोष पता चल जाएं। तो बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, छेड़ाला में कहा है ना, गुण और दोषों को आप नहीं समझते हैं तो सम्यक दर्शन भी होने वाला नहीं है। तो लक्षण पता लगाने के लिए कहा है, सच्चे गुरु का क्या लक्षण है, सच्चे देव का क्या लक्षण है, सच्चे शास्त्र का क्या लक्षण है, ये लक्षण पता लगाने के लिए कहा है। उनका यदि पता नहीं लगाना चाहते हैं तो मत लगाओ, अपने सच्चे आत्मा के स्वरूप का तो पता लगाओ, सम्यक दर्शन हो जाएगा। सच्चे गुरु देवशास्त्र गुरु का लक्षण पता लगाना या अपने आत्म लक्षण का पता लगाना एक ही बात है। वो जो आत्मा को जानता है वो भी सम्यक दृष्टि बनता है, जो देवशास्त्र गुरु को जानता है वो भी सम्यक दृष्टि बनता है। किसी का भी पता लगाओ, और इसमें हम एक का भी पता नहीं लगा पा रहे, आत्मा के सच्चे स्वरूप का भी पता नहीं लगा पा रहे और सच्चे देवशास्त्र गुरुओं का भी पता नहीं लगा पा रहे, इसलिए संसार में है। तो अंधश्रद्धा हमारे अनादिकाल से हमको संसार में रोक रखी है, अंधश्रद्धा के कारण से हम संसार में हैं। और ये अंधश्रद्धा किस कारण से होती है ये पूछेंगे तो अज्ञान के कारण से होती है। तत्व विषय संबंधी, उस विषय संबंधी अज्ञानता रहती है इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। तो बाहर का जरा गौन करो, अंदर का सोचो। अंदर में हम अपने आत्म स्वरूप को पता लगाना चाहते हैं, चलो अपने आत्मा को ही सच्चे गुरु बना ले, अपनी आत्मा को ही सच्चे गुरु बनाना है। चाहे इस आत्मा के सच्चे गुरु पने की श्रद्धान कर लो, चाहे बाहरी सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धान कर लो, बात तो एक ही। बाहर का श्रद्धान करने से, बाहर के सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करने से अंतरंग का जो क्षयोपशम है उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, परंतु हम अपनी आत्मा के सच्चे गुरु पने का पता लगाएंगे और उसको हटाएंगे दोष को, तो हमें प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ेगी, प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, वो तत्काल हट जाएगा। देखो बाहर का पता लगाया और फिर बाहर का पता लगाने के बाद फिर अंदर का पता लगाया, टाइम लगा इसमें। मैं भी वैसा ही हूं, मेरा स्वरूप भी ऐसे सच्चे गुरु के समान ही है, मैं भी सच्चे गुरु के समान स्वरूप को धारण करने वाला आत्मा हूं, जो कि मेरे पास भी अनंत अनुबंधी अप्रत्याख्यानावरणी प्रत्याख्यानावरणी ये कषाय हैं। इन तीनों कषायों को जब जीत लूंगा सच्चे गुरु के रूप में मैं ही कन्वर्ट हो जाऊंगा, ये स्वरूप पता लगाना चाहिए। क्या आप लोगों की आत्मा में वो कषाय है? नहीं। और फिर इन कषायों को धारण करते हैं तो फिर इनका क्या नाश नहीं कर सकते? तो आप नाश कर सकते हैं तो आप ही सच्चे गुरु बन गए, और सच्चे गुरु बनने के लिए और सच्चे देव बनने के लिए तो मोक्ष मार्ग है। जैन धर्म किसका उपदेश दे रहा है? भगवान बनने का उपदेश दे रहा है कि भक्त बनने का उपदेश दे रहा है? भक्त नहीं भगवान बनो, यही कह रहा है ना। हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे ये भावना रखना पड़ेगा, हम में भी भगवान बनने की शक्ति है, हम भक्त ही नहीं बन करके रहेंगे, भगवान भी बनेंगे। कैसे बनेंगे? इन कषायों को जीत कर बनेंगे। तो सच्चे गुरु का स्वरूप क्या है? तीन कषायों के विजेता होना और एक मिथ्यात्व का विजेता होना। मिथ्यात्व यानी अंधश्रद्धा, कषाय यानी असंयम। कषाय यानी बाह्य परिग्रह की ओर जो आकर्षित करा देती हैं, ऐसे कषाय परिणाम, ऐसे कषाय भाव, उसको त्यागना पड़ेगा। दो ही त्यागना पड़ेगा आपको, एक अंधश्रद्धा छोड़ना है, अंधश्रद्धा छूटेगी तो सम्यक दर्शन होगा, गारंटी। और कषाय छोड़ेंगे तो चारित्र प्रकट होगा नियम से। तो रत्नत्रय आ गए क्या? नहीं आ गए, रत्नत्रय आ गए तो आप सच्चे गुरु बन गए। जैसे गुरु थे बाहर सोचते थे कि सच्चे गुरु का श्रद्धान करो, वो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वहां करने की अपेक्षा से यहीं कर लो ना काम, अंदर ही कर लो, टाइम नहीं लगेगा। सयमा सय मैंने पंचम गुणस्थान और सयम मैंने छठा गुणस्थान, वो मुनि का सम्यक प्रकृति में, सम्यक प्रकृति में नहीं, सम्यक प्रकृति में कहां का क्षोभ। सम्यक प्रकृति का उदय रहता है सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद भी, सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद एक का ही उदय रहेगा, क्षोभम सम्यक दृष्टि को एक का उदय रहता है, उपशम सम्यक दृष्टि को उस एक का भी नहीं उदय होता है। सातों प्रकृतियों का अनंतानुबंधी चार मिथ्यात् सम्यक मिथ्यात् सम्यक प्रकृति, इन सातों का उपशमन रहता है, एक भी उदय में नहीं। उसमें से एक उदय में आया सम्यक प्रकृति तो क्षायोपशम सम्यक दृष्टि कहलाया। और इन सातों प्रकृतियों को यदि निर्जरा कर डाली, क्षय ही कर दिया, तो क्षायिक सम्यक दृष्टि कहलाया। ये गणित जरा जल्दी नहीं बैठती है ना, ये क्या है? ऐसा लगता है ये क्या है, ये कुछ नहीं है, बहुत सरल है। जरा उसका मनन करो, इतना प्रयत्न करो कि 28 मोहनी कर्मों को पहले याद करो, फिर याद करने के बाद उनका स्वरूप समझो कि ये क्या है, ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, ऐसे कोई प्रत्येक कर्म क्या कार्य करते हैं आत्मा के साथ, इसको समझो तो उसका स्वरूप समझ में आएगा। उसी से पूछो क्यों सता रहा है, आपके पास सभी हैं, आपके साथ 28 पूरे हैं आपके पास, पूछो उनसे हमको क्यों सताते हो, हम तो जीव हैं। तो फिर ऑटोमेटिक सम्यक दर्शन इससे हो जाएगा, ऐसा विचार भी करेंगे तो। कर्म सताता है इस पर विश्वास चाहिए का नहीं, मैं कर्मों के द्वारा सताया जा रहा हूं, कर्म मुझे सताता है, इस पर विश्वास चाहिए कि नहीं? और विश्वास ना हो तो हम क्या करते हैं, कहां कर्म सताता है, देख लेता हूं कैसे सताता है, तो विश्वास नहीं है। तो कर्म सता रहा है, अगर कर्म ना होते तो आप शरीरधारी भी नहीं रहते। कर्म है इसके विश्वास के लिए, कर्म सिद्धांत है सताने वाला, इसके विश्वास के लिए प्रत्यक्ष उदाहरण आपका शरीर है। ये किस कर्म का फल है, नाम कर्म का फल। देखो फल दिख रहा है, फल दिख रहा है, लेकिन कर्म नहीं दिख रहा है। कर्म जिस कार्य को संपन्न कर चुका है वो उसका फल है, वो कार्य तो दिख रहा है, उसका फल दिख रहा है, लेकिन उसका जो कारण है, कर्म कारण है, कारण नहीं दिख रहा है। आम का पेड़ दिख रहा है, लेकिन आम का पेड़ जो गुठली के कारण से इतना बड़ा बन गया है, हजारों फल दे रहा है, वो फल दे रहे हैं, फल दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, शाखाएं दिख रही हैं, इतना बड़ा पेड़ दिख रहा है, लेकिन वो गुठली नहीं दिख रही है, वो गुठली नहीं दिख रही है। कारण नहीं दिखता, कार्य दिखता है। कारण नहीं दिखता, कार्य दिखता है। हमको क्या दिखता है, हमको कुछ नहीं दिखता है, शरीर ऊपर का दिख रहा है, आपका पेट भी आपको नहीं दिख रहा है। आपके आंख भी आपको नहीं दिख रही है, जब दर्पण में जाकर के देखोगे तब आंखें दिखेंगी, वैसे ही शास्त्र के दर्पण में जब दिखोगे कर्म भी दिखेंगे। जब गुरु के सत्संग में जाकर के देखोगे तो अपना असयम भी दिखेगा। अपना मिथ्यात्व भी दिखेगा, अपने दोष भी दिखेंगे, संयम का मार्ग भी दिखेगा। तो देव शास्त्र गुरु तो दर्पण है। कर्म हमें नहीं 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 कथनचित सत्य है वो। हाँ, जिंदा नहीं की, कर्म जिंदा नहीं होते, उसमें प्राण नहीं आते। कर्मों को हमने बुलाया है, ये कहो, जिंदा मत कहो, बांधा है हमने उनको, बुलाया है, बांधा है अपने परिणामों के माध्यम से। कैसे परिणाम? कषाय परिणामों के माध्यम से। सदा जो कर्म का बंध होता है वो चार कषायों के कारण से होता है। गुस्से करते समय, अहंकार करते समय, मायाचारी के परिणाम छल कपट करते समय और लोभी बनते समय। ये चार ही परिणाम कारण है, कर्मों का आश्रय और कर्मों का बंध। हाँ, हम ही उनको बुलाते हैं। बुलाया किसने? हमने बुलाया है, वो मेहमान है। निमंत्रण किसने दिया? हमने दिया है। फिर छोड़ करके कौन आएगा? आदर के साथ, हे मेहमान, आपको आदर के साथ हमने अनादिकाल से बुलाया। हमको मालूम नहीं था कि आपको बुलाने से हमको तकलीफ होती है। आपको बुलाने से हमें तकलीफ होती है, हे मेहमान। अब तो हमको समझ में आ गया है, आपके कारण से हम दुखी रहते हैं। तो दुखी रहते हैं तो मेहमान ये नहीं कहता कि मेरे वजह से तुम दुखी रहते हो। सुनो सुनो, मेरे वजह से तुम दुखी रहते हो, तुमने मुझे बुलाया और मेरे वजह से तुम दुखी रहते हो, तो हम जाने के लिए भी तैयार हैं। तुम भेजने के लिए तैयार हो जाओ, हम जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, हम ही भेजने के लिए तैयार नहीं हैं, हम वो भेज करके आने के लिए तैयार नहीं हैं। गलती किसकी है? हमारी है। गलती भी हमारी और सही भी हमारी। चित्त भी अपना है, पट भी अपना है। हाँ, कर्म का दोष नहीं है, कर्म तो जड़ है, पुद्गल है। जीव दोषी बनकर उसको बुलाया है। द्वितीयोपशम सम्यक तो अलग है, वो श्रेणी चढ़ते समय होता है। द्वितीयोपशम सम्यक तो जब मुनि महाराज विशेष श्रेणी चढ़ने वाले होते हैं, यानी सात्विक गुणस्थान से आगे जाना चाहते हैं, तो उस समय शेष जो मोहनी कर्म उनके उदय में रहते हैं उनके उपशम नादि कार्य करते हैं। जैसे संज्वलन कषाय उदय में है, नव नौ कषाय उदय में है, ये 13 कषाय उदय में है, 9 और 4 13, इनका भी उपशमन करते करते जाना है। कहाँ तक जाना है? 11वें तक जाना है। तो उस उपशम श्रेणी में चढ़ने के लिए कम से कम एक द्वितीयोपशम सम्यक तो चाहिए ही। क्षायिक सम्यक तो भी चलेगा, लेकिन द्वितीयोपशम सम्यक तो भी चल सकता है। तो द्वितीयोपशम सम्यक तो में क्या करता है? द्वितीयोपशम सम्यक तो में ये करता है, अनंतानुबंधी को उदय में आने योग्य नहीं बनाता, और अप्रत्याख्यानावरणी कर्म को, अनंतानुबंधी कर्म को उदय में आने योग्य नहीं बनाता। कैसे बनाता है? तो अनंतानुबंधी को वह अप्रत्याख्यानावरणी कर्म में कन्वर्ट कर देता है। कितने समय के लिए? अंतर मुहूर्त के लिए, श्रेणी चढ़कर 11वें गुणस्थान में जाकर नीचे आने तक उसकी विसंयोजना वह करता है, विसंयोजना करता है। इसको द्वितीयोपशम सम्यक्तो कहते हैं। द्वितीयोपशम सम्यक्तो के काल में सत्ता में अनंतानुबंधी नहीं रहती और उदय में सम्यक प्रकृति भी नहीं होती। तो उदय में क्या रहता है? उदय में अप्रत्याख्यानावरणी कषाय हो सकता है, प्रत्याख्यानावरणी कषाय हो सकती है, संज्वलन कषाय उदय में हो सकती है। अब इन 21 प्रकृतियों को, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी, संज्वलन और नौ नौ कषाय, ये कितने हो गए? 21। 21 प्रकृतियों को उपशमन करने हेतु ही ऐसा ये सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन। हाँ सत्ता में रहती है, वो क्षय नहीं होती। क्षायिक सम्यक दर्शन की ओर बढ़ेंगे तो क्षय होगा। अभी तो द्वितीय उपशम है, सभी को दबाने का नाम उपशम है और हटाने का नाम, क्षय करने का नाम क्षायिक है, और कुछ को उपशमन करना और एक को उदय में रखना, किसी एक को उदय में रखना और जो उपशमित हैं उनको सत्ता में उपशमन ही रखते हुए उदयागत जो कर्म रहते हैं उसमें ला ला करके परिवर्तित करके उस रूप में, उन कर्मों के रूप में परिवर्तित करके उसको निकालना, ये क्षयोपशम है। क्षयोपशम में क्या होता है, कुछ कर्मों को तो हम पूरी दबा देते हैं हा? और एक को उदय में रखते हैं, जैसे अनंतानुबंधी को दबाया तो किस गुणस्थान में चले गए, चौथे चले गुणस्थान में चले गए मान लो। अब अनंतानुबंधी दब दब करके रहेगा वहां, तो वो उदय में तो आने का कोशिश करेगा ना, बैठे बैठे कहाँ क्या करेंगे, उनका काल पूर्ण हो गया तो उदय में आने का कोशिश करेगा वो, तो उदय में आते समय उदयावली में प्रवेश करता है, यानी मार्ग में प्रवेश करता है उदय में आने के लिए। तो आपके उदय में कौन सा है, अप्रत्याख्यानावरणी, अनंत अनुबंधी को अप्रत्याख्यानावरणी कर्म के रूप में कन्वर्ट करके निकाल देता, वो स्वमुख से उदय में नहीं आ सकता, परमुख से आता है। परमुख का मतलब यह है कि अप्रत्याख्यानावरणी क्रोध मान माया लोभ में जो शक्ति है उस शक्ति को ही स्वीकार करके वे कर्म परमाणु निर्जरित होंगे। उदय में तो आएंगे, वो उदय में आने के बाद अनंत अनुबंधी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उसकी शक्ति को क्षीण कर दिया, ये उदयावली है। और ये उदय है पानी, ये टंकी है मान लो, ये चाबी है और ये टंकी है, यहां यहां ऊपर तो पानी भर दिया है, तो यहां पर जो है एक कपड़ा बांधा है, कपड़ा बांधा है और टंकी का पानी इसमें आया, नली में आया, नली से चाबी में आया, चाबी से कपड़े में आया, कपड़े को टच करके ही जाना पड़ेगा ना, टच करके ही जाना पड़ेगा, टच किए बिना गिर सकता है क्या? हाँ, तो टच करेगा तो कपड़े के प्रभाव को स्वीकार करके ही जाएगा वो, और इस कपड़े में ऐसी शक्ति है, इस कपड़े में ऐसी शक्ति है जो अपने प्रभाव को उस पर डाल सकता है कि उसकी पूरी शक्ति को कुंठित करके बाहर छोड़ देता है। हाँ, स्पीड को कम करता है, वो कचरा कम करता है, स्पीड को कम करता है, तो उसमें उस कचरे में क्या क्या है, उस कषाय में भौतिक सुख की कामना की कचरा है, उसको छान देता है, आने नहीं देता उदय में। भौतिक कामना ये अनंतानुबंधी लोभ है, आत्मकल्याण के परिणाम नहीं है। अनंतानुबंधी कषाय उदय में जब आती है ना, आत्मकल्याण करने नहीं देती, वो बहिर्मुखी बना देती है जीव को, ख्याति लाभ पूजा यानी बाहरी दृष्टि से ही धर्म करना, पर के लिए ही धर्म करना, अंतरंग आत्मसिद्धि के लिए कुछ नहीं करता वो, तो ख्याति लाभ पूजा के परिणाम रहते हैं अनंतानुबंधी कषाय वाले जीव के पास। परंतु इस जीव ने क्या किया, अनंतानुबंधी को उपशमन किया और अप्रत्याख्यानावरणी कर्म का वो कपड़ा बांध लिया, तो अब क्या होगा, वो डायरेक्ट उदय में नहीं आएगा, कचरा हो जो भी हो वो अंदर ही रहे बाहर ना आए, ऐसा कौन कंट्रोल कर रहा है वहां, अप्रत्याख्यानावरणी कषाय, अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के पास ये ताकत नहीं कि वो आपको बहिर्मुखी बना सके, बहिर्मुखी श्रद्धा बना सके, भौतिक सुख के प्रति आस्था जगा सके, ये शक्ति उसके पास नहीं है, ये अनंत अनुबंधी के पास ही है। इसलिए एक कषाय अच्छी है, एक कषाय बहुत बुरी है, ये समझ में आना चाहिए। अनंत अणुबंदी बुरी है, किस कषाय की अपेक्षा? अप्रत्याख्यान की अपेक्षा, क्योंकि इस कषाय के उदय में आत्मा को बहिर्मुखी परिणाम नहीं होते, तो उसको उदय में रखो ना। लेकिन इसके उदय से बहिर्मुखी परिणाम तो नहीं होते, सम्यक्तों का लाभ तो होता ही है, किंतु हानि भी है, ये अनेकांत है। अप्रत्याख्यानावरणी कषाय लाभकारक भी है, हानिकारक भी है। हानिकारक किसके लिए हानि पहुंचाता है? हमें देश संयम प्रतिमाधारी बनने नहीं देता, इसलिए हानिकारक भी है। तो इस हानिकारक कषाय को और दबाएंगे तो एक देश चारित्र का लाभ होगा। देखो क्या बताया, एक देश चारित्र का लाभ होगा। किसको दबाएंगे? तो अप्रत्याख्यान को दबाओ। अब दबाओ तो मतलब इस कपड़े के ऊपर एक कपड़ा और बांधो तो दो कपड़े हो गए। अब पानी में जो बारीक मिट्टी रहती है ना वो भी बाहर नहीं पड़ेगी, वो असयम की मिट्टी है जो बाहर आ रही थी। अब उससे घनीभूत एक कपड़ा, मोटा कपड़ा बांध लिया, ये प्रत्याख्यानावरणी का है। प्रत्याख्यानावरणी का कपड़ा बांध लिया। अब ये प्रत्याख्यानावरणी का कपड़ा क्या काम करता है? क्या काम कर रहा है बोलो? हाँ, हाँ विचार करके बोलो क्या कर रहा है वो अब? संयम को, हाँ जो असयम है पूर्ण रूप से असयम परिणाम जो थे उसको कैंसल कर रहा है वो। एक देश संयमी बनो, तुमको बनना ही पड़ेगा। एक देश संयमी रहना ही पड़ेगा जब तक उसका उदय है, अकेला उसका उदय, दो नहीं है, दबे हुए हैं और अकेला उसका उदय है। तो एक देश संयमी, संयम के परिणाम आपको बने ही रहेंगे, असंयम की ओर, पूरे असंयम की ओर नहीं खींच करके ले जा नहीं सकता वो। ठीक है, हमको देश संयम होने दिया किसने? प्रत्याख्यानावरणी कषाय ने। और अप्रत्याख्यानावरणी कषाय को हमने हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि ये देश संयम लेने नहीं दे रहा था। अब प्रत्याख्यानावरणी कषाय भी वो लाभकारी भी है और हानिकारक भी। किसके लिए हानिकारक है? हाँ हाँ, मुनि बनने के लिए हानिकारक है। मुनि बनने के लिए सकल संयम यानी परिपूर्ण परिग्रह त्यागने के लिए हानिकारक है। वो ये कहता है सब मत छोड़ो। देखो छोड़ो भी कहा तो हमने छोड़ दिया। कितना छोड़ो कहा उसने? थोड़ा छोड़ो तो छोड़ा हमने, छोड़ दिया। अब पूर्ण छोड़ो क्या पूछ रहा हूं? हे मत छोड़ो, ऐसा मत काम करो, ऐसा कह रहा, ऐसा समझाता है वो। कैसा है देखो ये लोग, प्रत्याख्यानावरणी कषाय का लोग कैसा है, सभी मत छोड़ो कहता। और ये जो मंद कषाय हो जाता है, मंद पड़ जाता है, तब जीव स्वयं अपना पुरुषार्थ कर सकता है, रास्ता निकाल सकता है। हमारा पुरुषार्थ कब चलता है मालूम? जब मंद कषाय, ये कषाय मंद पड़ जाती है ना, तो मंद करने की शक्ति किसके पास है? जीव के पास ही। मंद भी कराएगा जीव ही। तो इसको मंद करा, इसको मंद कराओ, और मंद कराने के बाद ये कहो चुपचाप रहो जब तक मैं संयम धारण नहीं करता हूं। और मंद की अवस्था में आप मुनि अवस्था में निकल गए, छठे गुण स्थान में निकल गए, तो ये तो सोया हुआ था, नींद कर रहा था, उस समय रास्ता था, हम निकल गए तो ये दब गया और संज्वलन कषाय उदित हो गया। अब कितने दब गए? तीन दब गए, तीन दब गए। अब संयमी बन गए हम, लेकिन ये संज्वलन कषाय भी एक तरफ तो लाभकारक है, क्या? संयम को हानि होने नहीं देता, ये जो सकल संयम आया है इसको नाश होने नहीं देता जब तक ये अकेला उदय में है और बाकी दबे हैं, तब तक हानि होने नहीं देता। अब देखो हानिकारक भी है क्या? नहीं, संज्वलन है, संज्वलन भी हानिकारक है। किसके लिए? यथाख्यात के लिए। यथाख्यात चारित्र के लिए हानिकारक है। तो सकल संयम से ऊपर का जो संयम है हाई लेवल का, वो यथाख्यात संयम, यथाख्यात चारित्र को यथाख्यात संयम एक ही बात है। यथाख्यात संयम के लिए ये संज्वलन कषाय हानिकारक है। तो हम क्या करेंगे? अब संज्वलन को भी दबाएंगे। कब दबाएंगे? तीव्र हो तो दबता नहीं वो, तो इसको मंद करना पड़ेगा। मंद करने का पुरुषार्थ करो और इसको दबाओ और ऊपर उठो। तो इससे भी ऊपर उठ गए। कहाँ गए? ग्यारहवें गुण स्थान में। लेकिन दबा करके गए हैं तो नीचे आएंगे ही, गिरेंगे। अंतर्मूर्त के बाद नीचे गिरेंगे। यदि उसको क्षय करके गए हैं तो गिरेंगे नहीं, आप सीधा ही ग्यारहवें में न जाकर बारहवें गुणस्थान में पहुंच जाएंगे। और ऐसा बारहवां गुणस्थान का जो स्थान है वहां पर हम कषाय विजी पूर्णतः बन जाते हैं। तो जो हो गया उपसंहार, तो जो कषाय थी वो क्षय होने पर हमारे लिए यथा क्या चारित्र को प्रदान करने में कारण बना, और जब वो क्षय हो गया तो केवल ज्ञान भी अंतर्मूर्त में हो गया। जब वो क्षय हो गया तो घाती कर्म भी अपने आप अंतर्मूर्त के भीतर नष्ट हो गए। तो मोहनी कर्म को क्षय करने पर कितने कितने काम हो जाते हैं, अपने आप हो रहे हैं। इसलिए मोह का क्षय करना ही मोक्ष मार्ग है, ये कहा। मोक्ष मार्ग क्या है? मोह को जीतना। तो जीतो, कहां से शुरू करोगे? करो अनंत अनुबंधी से शुरू कर दो, सब आ जाएंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जीवन में आ जाएंगे, धर्म आ जाएगा। ओरिजिनल धर्म तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, उस ओर बढ़ना चाहिए। क्या हो गया आज? चर्चा ही हो गई, ये कुछ लगा ही नहीं।
प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे शीशन वाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांद रहे अब ना हम विषयांद